परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी। मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना, मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
ओम शांति। इस आध्यात्मिक मार्ग में, इस रूहानी मार्ग में सदा उमंग उत्साह के साथ चलना, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। इसके लिए मन में रूहानी क्रांति होनी आवश्यक है। जब तक मन में क्रांति का भाव नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी, कभी ना कभी कोई ना कोई बंधन में आत्मा बंधी हुई रहेगी। चाहे किसी व्यक्ति के प्रभाव में, चाहे संस्कारों के प्रभाव में, चाहे साधनों के प्रभाव में, कहीं ना कहीं आत्मा फंसी हुई रहेगी। तो जीवन में रूहानी क्रांति लाने के लिए, जैसे कल आप हम सभी ने सुना, पहला सूत्र रूहानी जागृति, कि जीवन में रूहानी जागृति लाने के लिए कौन कौन से आवश्यक पहलू हैं जिन पर हमारा पूरा पूरा अटेंशन, पूरा पूरा ध्यान होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम हमेशा जागती ज्योत बनकर रहें, सदा अलर्ट रहें, एक्टिव रहें और इस रूहानी मार्ग पर हम कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार से आज दूसरा सूत्र है रूहानी बेहोशी। तो इस मार्ग पर चलते चलते हर एक के जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो कहीं ना कहीं मन को उदास, हताश, निराश कर देती हैं, जिससे आत्मा बेहोशी की स्थिति में चली जाती है और एक लंबे समय तक उसी बेहोशी की स्थिति में चलते रहते हैं। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन हमारी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए रूहानी क्रांति के लिए रूहानी बेहोशी को जानना भी आवश्यक है, कि रूहानी बेहोशी की स्थिति क्या होती है, रूहानी बेहोशी किस किस कारण से आती है और उस रूहानी बेहोशी से निकलने के साधन क्या हैं, तरीके क्या हैं। जैसे कोई एक शरीर से बेहोश व्यक्ति कोई काम का नहीं होता है, व्यक्ति फिजिकली कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी स्वस्थ हो, शक्तिशाली हो, लेकिन वो उस समय यदि बेहोशी की स्थिति में है तो उसकी कोई भी पावर काम नहीं करती है। बेहोशी चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे निद्रा के बेहोशी हो, नींद के कारण बेहोशी की स्थिति में हो, चाहे एनेस्थीसिया के कारण बेहोशी की स्थिति में हो, किसी कारण से ब्रेन हेमरेज हो जाए उस कारण से बेहोशी की स्थिति में हो, या कोमा में चला जाए, किसी भी कारण से यदि व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में है, तो उस समय उसकी इंद्रियां, उसके ऑर्गन्स उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके बस में नहीं है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जब कोई गहरी नींद में होता है तो उसमें व्यक्ति न चाहते हुए भी बहुत कुछ बोलता रहता है, उसको भी एहसास नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कोई बहुत दारू पीने वाला अल्कोहल ले लेता है तो उसकी उस समय स्थिति क्या होती है कि उसके मन से बहुत सारी ऐसी व्यर्थ की व्यर्थ बातें निकलती रहती हैं जो कि अनावश्यक होती हैं, जो कि उसके लिए नुकसानकारक होती हैं। वो होगा कहीं कोई नाली में और अपने आप को महसूस करेगा कि हम तो एक बादशाह हैं, उसको नशा होगा, अर्थात उसको उल्टा नशा होगा। इसी प्रकार इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें बेहोशी की स्थिति में ले जाती हैं, लेकिन यदि उन बातों के बारे में हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी और उससे बाहर निकलने की प्रॉपर विधि हमारे पास नहीं होगी, तो हम इस ज्ञान मार्ग में तो चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर नहीं चल रहा होता है, अर्थात हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। तो बाबा ने 6 अप्रैल 1982 की मुरली में इस विषय पर चर्चा की कि ब्राह्मण जीवन में बेहोशी के कारण क्या हैं। तो बाप दादा ने राजर्षियों की सभा देखी और बाबा उसमें देख रहे हैं कि सभी आत्माएं राजऋषि बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि राजऋषि अर्थात जो राज्य अधिकारी भी हैं और महातपस्वी भी हैं, तपस्वी अर्थात त्यागी और तपस्वी। तो बाबा ने कहा कि ये अपने आप को जानते हो क्या, अनुभव भी करते हो कि हम अधिकारी भी हैं और साथ साथ त्यागी और तपस्वी भी हैं, इसका अनुभव भी करते हो? तो बाबा ने कहा कि जैसे देह भान का त्याग किया, पहला त्याग, तो देह भान का त्याग करने से आप अधिकारी बन जाते हो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो। तो बाबा ने कहा कि उस समय जब आप देह भान का त्याग करते हो तो आप दास से अधिकारी बन जाते हो। अव्यक्त बाप दादा ने कभी कोई त्याग पर एक सीरीज चलाई थी जिसमें विशेष 7 मुरलियाँ थी, 7 बातों का त्याग, और उस हर एक मुरली में बाबा ने साकार ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे देह के भान का त्याग किया, देह के संबंधों का त्याग किया, देह के संस्कारों का त्याग किया, देह का धर्म उसका त्याग किया, देह के पदार्थों का त्याग किया, नाम मान शान का त्याग किया और 7वीं विशेष बात त्याग का भी त्याग किया, सर्वं से त्यागी। तो बाबा ब्रह्मा बाबा त्याग के माध्यम से इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए। तो बाबा ने इस मुरली में विशेष अधिकारी आत्मा और दास आत्मा इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट बताया और बाबा ने कहा कि अपने आप को देखो, स्वयं को चेक करो कि मैं कौन। तो इस मुरली में बाबा ने 5 बातें बताईं कॉन्ट्रास्ट में, जिसमें पहली बात है कि जो दास आत्मा होगी, दास आत्मा अर्थात रूहानी बेहोशी की स्थिति में स्थित आत्मा, तो रूहानी बेहोशी वाली आत्मा की पहली निशानी होगी कि वो हमेशा तन और मन से उदास रहेगी, उसके जीवन में कोई भी उमंग उत्साह नहीं होगा, खोई खोई रहेगी, सोई सोई रहेगी। उससे पूछेंगे क्या कारण है, किस वजह से आप इस प्रकार से उदास हैं, तो कहेंगे कि कोई खास वजह नहीं, बाकी स्थिति उदास है। तो बाबा ने कहा कि जो दास आत्मा है, जो रूहानी बेहोशी की स्थिति वाली आत्मा है, वो हमेशा उदास रहेगी, तन से भी और मन से भी। और बाबा ने कहा कि जो राज्य अधिकारी आत्मा है, वो तन और मन से हर्षित रहेगी। ये पहली निशानी है, पहला कॉन्ट्रास्ट है। दूसरा कॉन्ट्रास्ट है कि वो शान में परेशान रहेगी। जो उदास आत्मा है, दास आत्मा है, वो हमेशा परेशान रहेगी, हर बात से परेशान रहेगी। जैसे कि मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो उससे परेशान रहेगी कि वर्तमान समय गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए, उनको एसी चाहिए। जब सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी से परेशान, उस समय उनको हीटर चाहिए। जब बरसात का मौसम आता है तो उस समय फॉग से परेशान। तो जो दास आत्मा है, जो रूहानी बेहोशी वाली आत्मा है, वो हर प्रकार से, हर बात से, हर परिस्थिति में अपसेट रहेगी। चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, हर बात से वो अपसेट रहेगी। कोई व्यक्ति यदि कहीं खड़ा है तो उसके खड़े होने से भी वो अपसेट रहेगी कि वो वहाँ क्यों खड़ा है। कोई कहीं जा रहा है तो उसके जाने से भी वो अपसेट हो जाएगी कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। कोई उससे मिलने आ रहा है तो उससे अपसेट रहेगी, भाई क्यों, क्या वजह है, क्यों मिलने आ रहे हो। कोई बात करता है तो उससे अपसेट रहेगी, कोई यदि उससे बात नहीं करता है तो उससे अपसेट रहेगी। तो माना ये संस्कार होता है जो आत्मा रूहानी बेहोशी में रहती है। तो दूसरा कॉन्ट्रास्ट है अपसेट रहना, हर बात से अपसेट रहना। तीसरा कॉन्ट्रास्ट है परेशान रहना। बाबा ने कहा कि जो रूहानी बेहोशी में रहने वाली आत्मा होगी, वो हर बात से परेशान रहेगी, हर चीज़ से परेशान रहेगी। और जो अधिकारी आत्मा होगी, वो अपनी रूहानी शान में रहेगी, श्रेष्ठ स्थिति की शान में रहेगी। और चौथा कारण है, चौथा कॉन्ट्रास्ट है, बाबा ने कहा कि जो दास आत्मा होगी, वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगी। वो जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में, हर पहलू से संबंधित जो भी बातें हैं उनमें वो उलझी हुई रहेगी। वो अपने जीवन से संबंधित किसी बात को प्रॉपरली निर्णय नहीं ले सकेगी, असमंजस में रहेगी। हम ये करें या वो करें, इस ब्राह्मण जीवन में चलें या न चलें, इस श्रेष्ठ पुरुषार्थी ग्रुप में जाएं या न जाएं, सेंटर पर रहें या घर में रहें, जॉब करें या कहीं बिजनेस करें, वो जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रहती है। ये एक उदास आत्मा की या दास आत्मा की या बेहोश आत्मा की निशानी है। और जो अधिकारी आत्मा होगी, वो हमेशा कंफर्ट में रहेगी, एक मौज में रहेगी। और लास्ट पांचवी जो कॉन्ट्रास्ट है, वो बाबा कहते हैं कि वो जब जीवन में आने वाली कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी परिस्थितियां हैं, कोई भी कारण है, उसमें वो अपने आप को एक मझधार में अनुभव करेंगी, जहां उसको ना आगे ना पीछे कहीं कोई सहारा अनुभव नहीं होगा। अपने आप को बेसहारा, अपने आप को असहाय, असमर्थ अनुभव करती रहेगी। और जो अधिकारी आत्मा होगी, वो सदा मांझी बन करके अपनी पावर के माध्यम से, ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से, अपने बुद्धि और बल के माध्यम से हर समस्या को खुशी खुशी से, एक खेल के माध्यम से उसको सहज पार करेगी और उसका लाभ उठाती रहेगी। तो बाबा ने इस मुरली में विशेषकर एक जो रूहानी बेहोशी की स्थिति में रहने वाली आत्मा है और जो अधिकारी आत्मा है, उसमें बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया कि ये पांच बातों का उनमें ये कॉन्ट्रास्ट होगा। दूसरा अपसेट है, तीसरा परेशान। परेशानी माना हर बात में परेशान होना, छोटी छोटी बातों में टेंशन लेना। अपसेट मीन्स जैसे कि थोड़ा सा मूड ऑफ होना, उदास होना, तो रूहानी जो बेहोशी का कारण है उसमें उसका जो मूल कारण है वो है अज्ञानता। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है कि जीवन में जो भी कारण पैदा हो रहे हैं वो कारण का उसका उसकी रूट क्या है, उसकी जड़ क्या है, और साथ साथ उससे उसका निवारण क्या है, तो उसके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। लेकिन जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, उन समस्याओं से वो अनभिज्ञ होता है, विशेषकर जो स्वयं के लाइफ में आने वाली समस्याएं हैं। व्यक्ति मोस्टली दूसरों को राय दे सकता है लेकिन खुद को राय नहीं दे पाता है कि हम इस परिस्थिति में कौन सी बात को अप्लाई करें जो हम इस समस्या से बाहर निकल सकें। हाँ, यदि वो परिस्थिति अगर किसी दूसरे के जीवन में होगी तो उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है, और स्वयं के लाइफ में होगी तो उसको हैंडल नहीं कर सकेगा। तो बाबा ने यह कॉन्ट्रास्ट इस मुरली बताया, जो रूहानी बेहोशी में रहने वाली आत्माएं हैं और जो अधिकारी आत्माएं हैं। और बाबा ने कहा कि जो रूहानी बेहोशी में रहने वाली आत्माएं हैं उन आत्माओं की कर्म लीला कोई विशेष होती है। तो बाबा ने वो साकार बाबा का एग्जाम्पल दिया कि यह साकार में एक कहानी सुनाते थे कि चूहा आया, चूहा को निकालते हैं तो बिल्ली आ जाती है, जब बिल्ली को निकालते हैं तो कुत्ता आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि आज कोई एक बात जीवन में आती है उसको निकालते हैं तो कल कोई दूसरी बात जीवन में आ जाती है, दूसरी के बाद तीसरी, ये हमेशा एक क्यू लगी रहती है। और जो दास आत्मा होती है, जो रूहानी बेहोशी वाली आत्मा होती है, वो उस भंवर जाल में हमेशा फंसी रहती है, उससे बाहर नहीं निकल पाती है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा ऐसी आत्माओं की कर्म लीला को देख मुस्कुराते रहते हैं, उन पर रहम भी आता है कि ये आत्माएं किन छोटी छोटी बातों में अपने आप को उलझाए हुए हैं, इन बातों के उलझन में फंसी हुई हैं। तो बाबा ने इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया मकड़ी का। जैसे मकड़ी होती है वो अपना जाल खुद बुनती है, और समय आने पर वो उस जाल को उसको हप कर लेती है, उसको स्वयं ही खा जाती है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे आपकी कर्मेंद्रियाँ हैं, इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो भी आपने जाल बुनी हुई है वो उसकी जाल बहुत बड़ी है, और वो जाल इतनी बड़ी है कि उस जाल में आप स्वयं फंस जाते हैं, आत्मा उस जाल में फंस जाती है। एक एक कर्मेंद्रिय की बहुत बड़ी बड़ी जाल है। तो बाबा ने कहा कि वो जाल जो है, उदास आत्माएं उस जाल में हमेशा फंसी रहती हैं, और उस जाल में फंसी रहने के कारण वो एक बेहोशी की स्थिति में रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ छत पर मकड़ी कहीं नीचे, छत से नीचे कहीं लटकी हुई होगी, और उसको यदि आप छेड़ेंगे तो फटाफट अपना जाल वो खा करके ऊपर चली जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी। तो बाबा ने कहा कि जो आपके कर्म इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, कान है, मुख है, तो बाबा ने कहा जो कर्म इंद्रियां भी मकड़ी की तरह हैं, ये अपना जाल बुनती हैं, लेकिन जैसे मकड़ी जाल को हप कर लेती है, इसी प्रकार से आपको भी अपनी इन सभी जो इंद्रियों से बनी हुई जो जाल है उसको हप करना है। तो बाबा ने कहा कि जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं वो आपको धोखा देती हैं, कभी आँख रूपी चूहा धोखा देता है, कभी कान रूपी बिल्ली धोखा देती है, कभी संस्कार रूपी शेर आप पर वॉर करता है, हमला करता है। तो बाबा ने कहा कि ये उदास आत्माएं जो हैं, जो रूहानी बेहोशी वाली आत्माएं हैं, वो आत्माएं इनके हमेशा इनसे हमेशा परेशान रहती हैं, इनके अधीन रहती हैं। तो बाबा ने कहा कि इसकी सहज विधि है कि इन सभी को हप कर लो। उसके लिए बाबा ने कहा कि आप बिंदु रूप स्थिति में स्थित होकर के इन सभी इंद्रियों को हप कर लो, अपने आप में समेट लो। और बाबा ने कहा कि इसका कारण है कि आप सीट से अपसेट रहते हैं। तो बाबा ने हंसी में कहा कि क्या सीट पर सेट होना नहीं आता है क्या, जो बार बार अपनी सीट से अपसेट होते हैं, क्या सीट पर सेट होना नहीं आता है? तो बाबा ने कहा कि अपने आप को बेल्ट से टाइट कर दो। वो कौन सी बेल्ट होगी? दृढ़ता और श्रीमत की बेल्ट, और कौन सी बेल्ट होगी? तो बाबा ने कहा कि जो जाल है इस जाल को हप कर लो और बिंदी बन जाओ और बिंदी में समा जाओ, बाप के लब में लबलीन हो जाओ। तो यह थी जो ज्ञान का सब्जेक्ट है उससे संबंधित बातें कि हमें इस ब्राह्मण जीवन में देखना है कि हमने ऐसी कौन कौन सी जाल बुनी हुई हैं जो हमारी इंद्रियां हैं, उन्होंने कौन कौन सी ऐसी जाल बुनी हुई है जिस जाल में हम फंसे हुए हैं, और उस जाल में फंसे होने के कारण हम एक बेहोशी की स्थिति में स्थित हैं। तो ज्ञान के सब्जेक्ट के माध्यम से हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कौन कौन से जाल में फंसे हुए हैं, और बाबा ने कहा कि उस जाल से अपने आप को निकालना है, और उसकी विधि है कि उस जाल को हप कर लेना, बिंदी बन जाना, बिंदी बन करके बिंदी बाप में समा जाना, अर्थात लवलीन हो जाना। तो पहला जो सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है योग का सब्जेक्ट। तो बाबा ने इस मुरली में योग के सब्जेक्ट, योग के प्रयोग के लिए पांच बातें बताई। तो पहली बात है कि जैसे कहा कि मकड़ी अपने जाल को हप कर लेती है, इसी प्रकार से पहली विधि है योग के प्रयोग की कि बिंदी बन करके जो भी इंद्रियों की जाल है, आँख नाक कान मुख संबंध संपर्क संस्कार, तो बाबा ने कहा उस जाल को हप कर लो, बिंदी बन जाओ, उस जाल को हप कर लो, तो आप इस बेहोशी से बाहर आ जाएंगे। दूसरा योग का प्रयोग है, बाबा ने कहा कि बिंदु बन करके एक बिंदु बाप में, बिंदु बाप के लब में लवलीन हो जाओ, तो बिंदु बाप के लब में लवलीन हो जाएंगे तो आप इस बेहोशी की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। तीसरा योग का प्रयोग है, बाबा ने कहा कि जैसे कोई वृक्ष होता है उसका आदि भी बीज होता है, उसका अंत में भी बीज होता है, तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय जो ये सारा कल वृक्ष है इसका अभी अंत समय है, समाप्ति की ओर है। तो बाबा कहती है कि अभी वर्तमान समय आप इस कल वृक्ष के ऊपर स्थित होकर के जो सारा ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, उसको अपने आप में धारण करके उसका अनुभव करो। तो योग का तीसरा प्रयोग यह है कि अपने को इस कल वृक्ष के ऊपर स्थित करके जो हमारी विशेषताएं हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, चाहे ज्ञान है, उसको अनुभव करना। चौथा बाबा ने कहा कि जैसे कर्नाटक पार्टी से मुलाकात में कहा कि कर्नाटक की विशेषता है, कर्नाटक अर्थात अभी नाटक पूरा हुआ और अभी अब वापस घर चलने की तैयारी। तो योग के प्रयोग की चौथी विधि ये है कि जैसे ये नाटक अभी पूरा हो रहा है और अभी वापस घर चलना है, अब घर जाना है, तो इसमें समेटने की शक्ति को अप्लाई करना है कि समेटने की शक्ति के माध्यम से जो बाबा ने कहा जो विस्तार है, जिस विस्तार में आत्मा फंसी हुई है, उस विस्तार को समेट करके अभी बिंदु बन करके वापस घर चलना है। और पांचवा योग का प्रयोग है जो यूपी जोन से कहा है, बाबा ने कहा यूपी में नदियां बहुत हैं और नदियों का लक्ष्य क्या होता है, सागर में समा जाना। तो पांचवा योग का प्रयोग है कि नदी बन करके ज्ञान सागर में समा जाना। तो ये योग के सब्जेक्ट में ये पांच बातें हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है बिंदी बन करके सारे जो जाल है, जो विस्तार है, उसको अपने आप में हप कर लेना। दूसरा है कल्प वृक्ष पर खड़े होकर के अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को अनुभव कर, स्वयं भी अनुभव करना और संसार की आत्माओं को भी देना। जो वर्तमान समय संसार की स्थिति है, हम उस समय उस स्थिति को हम अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है बिंदु बाप में लवलीन हो जाना, और चौथा है अब घर जाना है, नाटक पूरा हुआ, अब घर जाने की तैयारी करनी है, और पांचवा है नदी बन सागर में समा जाना है। तीसरा है धारणा का सब्जेक्ट में बाबा ने बहुत सारी बातें इस मुरली में कही हैं, जैसे कि पहली मुख्य धारणा है कि बिंदु बन करके सारी सब बातों को अपने आप में समेट लेना है। तो यहाँ समेटने की शक्ति को धारण करना है, साथ साथ परखना भी है, परखने की शक्ति को भी हमें यूज करना है, अप्लाई करना है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं। आत्मा ने मन बुद्धि संस्कारों ने इंद्रियों ने कहाँ कहाँ वो जाल बुना हुआ है, पहले उसको परखना है, निर्णय करना है, उसको हप करना है। साथ साथ समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, इन शक्तियों को अप्लाई करना है धारणा के सब्जेक्ट में। और दूसरी बात है, बाबा ने कहा कि फॉलो फादर, बाबा ने कहा कि फॉलो फादर करना है, ब्रदर और सिस्टर को फॉलो नहीं करना है। किसी में कोई विशेष कला है, कोई विशेष योग्यता है, कोई विशेष हुनर है, तो उसको आप अपने जीवन में ला सकते हो, लेकिन उस आत्मा को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हर एक आत्मा की विशेषताएं हैं तो उसकी कमजोरियां भी हैं। यदि किसी आत्मा को यदि आप फॉलो करेंगे तो उसकी कमजोरियां भी आपके जीवन में आने लगेंगी, इसलिए किसी आत्मा को फॉलो नहीं करना है, उसकी विशेषता को आप जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फॉलो फादर करना है, न कि फॉलो ब्रदर और सिस्टर। बाबा ने कहा यह नया रास्ता नहीं चुनना है कि किसी आत्मा को फॉलो करना, जो बाप का फुट स्टेप है उसी फुट स्टेप पर अपना चलना है, फुट स्टेप रखना है, तो बाप के कदम पर कदम रख करके आगे चलते रहना है। तो ये धारणा के सब्जेक्ट में बाबा ने कहा कि बाप को फॉलो करना है, न कि अन्य आत्माओं को। और सेवा के सब्जेक्ट में विशेष दो बातें बाबा ने कही। पहली बात है कि जैसे बाबा ने कहा कि बाप की मर्जी है कि सभी आत्माएं शुभ चिंतन करें और शुभ चिंतक बने, स्वयं के प्रति शुभ चिंतन करें, ज्ञान का चिंतन करें और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बने। दूसरी बात, स्व कल्याणी और विश्व कल्याणकारी बने। तो ये बाप की मर्जी है, तो ये सेवा का सब्जेक्ट है कि हम अपने स्वयं का भी चिंतन करें, ज्ञान का चिंतन करें, मनन करें गुणों का, शक्तियों का। तो यदि हम ज्ञान गुण और शक्तियों का चिंतन करते हैं तो उससे जो हमारी स्थिति बनेगी, जो हमारी उससे स्थिति बनेगी, उस स्थिति का प्रकंपन, उसका प्रभाव स्वतः ही वायुमंडल में, वातावरण में फैलता है। तो एक तो इससे सेवा होती है। दूसरी, बाबा ने कहा कि संसार की आत्माओं के प्रति भी कल्याणकारी बनना है, संसार की आत्माओं का भी कल्याण करना है। और उसके लिए आप जो भी विधि यूज कर सकते हैं उस विधि के माध्यम से आप संसार की आत्माओं का कल्याणकारी बने, कल्याण करें। दूसरा, जो योग का प्रयोग है, जो बाबा ने कहा कि कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े होकर के अपनी एक संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित होकर के संसार की आत्माओं को सकाश देना, तो ये दो विधियों को हम सेवा के माध्यम से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो स्वचिंतन करना, अन्य आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामनाएं रखना, स्वकल्याण करना, स्वकल्याणकारी बनना और विश्व कल्याणकारी बनना। और दूसरा जो है, जो बाबा ने कहा कि कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े होकर के संसार की आत्माओं को सकाश देना। तो वर्तमान समय जो संसार की जो स्थिति है, इस समय संसार की हर एक आत्मा को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इस समय सभी आत्माएं उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, परवश हैं। तो बाबा ने कहा कि इस समय आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है संसार की हर एक आत्मा को इस समय विशेष सकाश देना। तो इस बेहद की स्थिति में स्थित होकर के संसार की हर एक आत्मा को शक्ति भरना, उनमें शक्ति देना, उनको शक्ति देना, उनमें शक्ति भरना, ये आपका विशेष एक सेवा की आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाबा ने आज इस मुरली में जो विशेष रूहानी बेहोशी की स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बारे में कहा कि जो रूहानी बेहोशी में रहने वाली आत्माएं हैं वो कोई ना कोई इंद्रियों के हमेशा बसीभूत रहेंगी, परवश होंगी, उनके दास होंगी। तो बाबा ने कहा कि उससे बाहर निकलने के लिए जो उनका जाल बिछाया हुआ है, जो आपकी इंद्रियों का जाल बिछा हुआ है, उसको हप कर लेना है। आपका लेना है साथ साथ बिंदु बहन बिंदु बाप में समाये हुए रहना है, लवलीन रहना है। इससे फायदा क्या होगा कि आपका समय वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी एनर्जी नहीं वेस्ट होगी, साथ साथ आपको इसमें सफलता अधिक प्राप्त होगी। और दूसरी बात है योग के लिए, तो बाबा ने कहा कि कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े होकर के संसार की आत्माओं को सकाश देना है, तो सारा दिन हमें इसका अभ्यास करना है, बीच बीच में समय निकाल करके। एक तो बाप के लब में लवलीन होने का अभ्यास करना है, दूसरी बात कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े होकर के संसार की आत्माओं को सकाश देना है, जो संसार की आत्माओं की डिमांड है उसको हमें फुलफिल करनी है। और धारणा के लिए बाबा ने कहा कि फॉलो फादर करना है, आत्माओं को फॉलो नहीं करना है, ब्रह्मा बाप और शिव बाप को फॉलो करना है। साथ साथ जो गुण व शक्तियों की धारणा की बात कही कि परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, समेटने की शक्ति और समानने की शक्ति स्वयं में लानी है, और बाबा ने कहा कि सेवा के लिए संसार की आत्माओं की सेवा करनी है, विशेषकर शुभ भावना शुभ कामना के माध्यम से, शुभ चिंतन के माध्यम से, सभी के प्रति हमेशा शुभ चिंतन की गंगा बहती रहे और साथ साथ सभी आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती रहे। तो ये आज का सेकंड सूत्र था रूहानी बेहोशी। तो रूहानी बेहोशी की स्थिति क्या होती है, उससे नुकसान क्या होता है, उसको जानना समझना आवश्यक है, और उससे हम बाहर कैसे निकलें, उसके लिए बाबा ने जो इस मुरली में या और अन्य मुरलियों में जो इसकी विधि बताई हुई है, उसके माध्यम से हमें अपने आप को हमेशा इस बेहोशी से बाहर रखना है। तो हम इस जो रूहानी क्रांति का मार्ग है, इस मार्ग पर हम हमेशा उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज की जो मुरली जो है, इस मुरली का टाइटल है दास और अधिकारी आत्माओं में अंतर। तो ये मुरली सभी पढ़ेंगे और इसके माध्यम से जो बाबा ने विशेष जो बाबा ने जो रूहानी बेहोशी के कारण बताए हुए हैं, उन कारणों को जानेंगे और उससे निकलने के लिए जो विधि बताई है उसको हम अप्लाई करेंगे, तो अवश्य ही हम इस रूहानी मार्ग पर, इस रूहानी क्रांति के मार्ग पर उमंग उत्साह के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।